मार्ग का निष्प्रभ हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो यित उसी में लीन रहो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं पास त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को करते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी श्रिया में चित्त सदा अनुरक्त रहे नमोस्तु अपराणि पूर्वाणि श्री स्वाध्याय विलयम श्री शुद्धोक्ति गाय सुगम करोमि हम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम् अज्ञान तिम्रान धानान ज्ञानान जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार नामधेयम् अस्मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनोनुसारमासाद्य श्रीमत् समंत भद्राचार्य देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहंतभासि यत्थं गणधर देवैः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानव गोवयम् शिरसा। इच्छाएं बनते सुध भक्ति का उस सबको को तसालोचिम अंगो अंग पहिने पाऊ ने प्रियम सुत परिमाणी उपभोग गए चूलिया के सुत तय तुविदम काम सयानिच कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमन सामी दुख को कम को वोलाव सुगैगमनम समाय मुंडम जिनगुण संपत्ति को मच्छम अत नमोस्तु पूर्वाणी श्री स्वाध्याय विलयम श्री आचार्य भक्ति गाय सुगम करो। शुद्ध जलधि पारगेभ्या सपरमति विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन आतरन्ति संसार सायरं घोरं शिन्नन्ति अच्युकम्मं जन्नं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्षद्वारक पाठ पाठन भटा प्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानवर्षं नायकाः चारितारणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छामि भन्ति आयुर्भक्ति काओ सगो को दशालोचन सम्मनानुसंधन संचरेयुतानं पंचविहाचारणम् आयुर्यानम् आयुराधि सुदनानुपदेशानं मोक्षायानम् तीरणगुणपालनयानम् सुसाहूनम् सयानिच कालमञ्चिनि पूजयामि वन्दामि नमंसामि दुख को कम को वैलाव सुगैगमनम समाई मंडम जिनगुण संपत्ति को। नमः शिवर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य समंत भद्र स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज के, ये रत्नकरंडक शाबकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। धर्म की शुरुआत सच्ची श्रद्धा से होती है और सच्ची श्रद्धा के मायने हैं मूर्ताओं से रहित अहंकार से रहित होकर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपना अनुराग प्रकट करना। सम्यक दर्शन में सामान्य दर्शन में जो दर्शन शब्द है उसके मायने हैं श्रद्धा रुचि प्रतीति स्पर्श। चार चीजें हैं। सबसे पहले किसी भी चीज के प्रति हमारी इच्छा पैदा होती है, चाहे वो बाह्य में इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा हो या कि मन के द्वारा हो। इच्छा जागृत होती है, फिर उस चीज के प्रति रुचि, वो इच्छा रुचि में बदल जाती है। और यदि वो रुचि सांसारिक है तो हम उसे कोई संसार का नाम दे करके, प्रेम कह करके, एक तरफ रख देते हैं। और अगर वही रुचि परमार्थ के लिए है तो फिर उसे हम श्रद्धा कहते हैं। रुचि का प्रधान रूप है श्रद्धा, जिसको रुझान भी कहते हैं। अब हमारा रुझान सच्चे देवगुरु शास्त्र की तरफ हो गया है। जैसे ही कर्मों का थोड़ा सा क्षोभसन होता है, मंदता होती है, तो फिर ये सारी चीजें मालूम अच्छी मालूम पड़ने लगती, इनमें रुचि होने लगती। वरना तो संसार में रुचि अनादिकाल से है सबकी। तो रुचि के बाद फिर धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा के बाद प्रतीति होना शुरू होती है। ऐसा ही है, जैसा भगवान ने कहा है ऐसा ही है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है, ऐसा हमें मालूम पड़ने लगता है अपने भीतर ही भीतर। जिसको अपन दूसरा शब्द जो हमेशा सुनने में आता है, भाव भासना होने लगी। जैसे लगातार घट शब्द सुनते सुनते, छोटे से बेटे ने घट घट कई बार सुना कि घड़ा लाओ घड़ा लाओ, तो सुनते सुनते जो है उसको अपने भीतर, जैसे ही अब अगली बार कोई कहता है घड़ा लाओ, तो उसके अंदर एक इमेज बनने लगती कि हाँ ये घड़े के मायने ये है। ये उसको प्रतीति होना शुरू हो जाती है, ऐसा उसको भीतर एहसास होना शुरू हो जाता है। और एहसास के बाद वो फिर जैसे कि आत्मस्वरूप के बारे में रुचि जागृत हुई है, आत्मा के प्रति या परमात्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है और लगने लगा है कि हाँ सचमुच जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही मेरा आत्मा का स्वरूप है। और फिर उस आत्मस्वरूप का जब स्पर्श कर लेते हैं तब कहते हैं कि ये आत्मानुभूति के क्षण हैं। रुचि, श्रद्धा, प्रतीति और स्पर्श, ये क्रम क्रम से हमारी श्रद्धा की प्रगाढ़ता के लक्षण हैं। एकदम हम शुरू में नहीं कह सकते कि जैसे ही श्रद्धा हुई और हमको आत्मा की अनुभूति होने लगी, पर हाँ एक स्थिति में जाकर के आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाती। और वे आत्मा की अनुभूति के क्षण कौन से होते हैं? जब हम पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो जाते हैं तब वे आत्मानुभूति के क्षण आते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि श्रद्धा तो हो जाती है, एक अवृत्ति व्यक्ति को भी हो जाती, जिसका व्रत नियम संयम कुछ भी नहीं है, उसको भी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा हो जाती। वो श्रद्धा धीरे धीरे प्रगाढ़ होना शुरू होती है और वो अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना शुरू करता है। इसीलिए तो टोडर मल जी को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखना पड़ा कि क्या चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग शुरू हो गया? तो कहते अवार कौनी आगे होसी निर्धार भया। ऐसा लिखा उन्होंने बड़ा स्पष्ट कि अब श्रद्धा तो हो गई तो क्या मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ? आप तो करें कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है, तो आपको श्रद्धा होने पर शुरू कर देना चाहिए मोक्ष मार्ग। कहते नहीं, श्रद्धा ने तो सिर्फ मोक्ष मार्ग का स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा होने पर ही, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के बाद ही हमें इस बात की प्रतीति होना शुरू होती, इस बात का हमें एहसास होना शुरू होता है कि हाँ यही मोक्ष मार्ग है। अभी अपना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ, अभी तो भगवान के कहे गए मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा हो गई है। कितना फर्क है स्वयं अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत करना और कही हुए मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा करना। लेकिन अपन लोग इस चीजों को गड्ढमड कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं तो गड़बड़ में पड़ जाते हैं। क्रम क्रम से हम आगे बढ़ें और अपने लिए देखें कि अभी तुम्हारी श्रद्धा हुई है। अगर श्रद्धा हो गई है तो हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देश व्रत इत्यादि ग्रहण करता है तो कहते हाँ अब आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि आपने जिस चीज पर श्रद्धा की है वो चीज आपके भीतर अब धीरे धीरे घटित होना शुरू हो गई। और फिर कहते जब महाव्रत जीवन में आ जाते हैं, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग चारित्र के साथ होने वाला जो सम्यक दर्शन है, उसमें फिर स्पर्श होना शुरू होता है। क्योंकि राग द्वेष का हमने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है और बुद्धिपूर्वक राग द्वेष का त्याग करने के बाद फिर आत्मा की निकटता होती है और हम आत्मा को निकट से अनुभव करते हैं। जैसे कि एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दिया जाता है, अपन देखें कि चले जा रहे हैं और बहुत प्यास लगी हुई है और चारों तरफ देख रहे हैं कि कहीं कोई पानी का इंतजाम हो जाता है, और आगे जाकर के एक व्यक्ति मिलता है और वो कहता है कि देखो भैया घबराओ मत, आकुल विकल मत हो, बस 50 कदम और चलोगे तो तुम्हारे लिए 100 कदम 50 कदम 100 कदम चलने पर पानी का एक सरोवर है, उसमें पानी मिल जाएगा। कैसा मालूम पड़ता है? जैसे मिल गया, नहीं लगता ऐसा।
इतनी देर से तड़प रहे थे और जैसे किसी ने कहा और उस पर विश्वास भी कर लिया पहले कि हाँ ठीक कहता होगा, और ऐसा लगने लगा उस श्रद्धा अकेले से लगने लगा कि जैसे हमको पानी मिल गया है पर अभी पानी मिला नहीं है, अभी तो देखा भी नहीं है पानी, अभी तो जो स्वरूप वस्तु का कहा है उसको हमने देखा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ सुना है। देशना लब्धि में क्या होता है, हम प्रयोजन भूत तत्व को सुनना पसंद करने लगते हैं और सुनने से ही ऐसा लगने लगता है जैसे मिल गया हो। अभी श्रद्धा भी पूरी नहीं हुई है, अभी पांचवी लब्धि जब होएगी तब जाकर के जो है पांच लब्धियां होने पर सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि ये एहसास तो पहले ही होने लगता है, जैसे ही सुना हमने और हमें रुचिकर लगने लगा तो समझिएगा कि ये शुरुआत हो गई, भूमिका बन गई। और फिर जाकर के आगे थोड़े आगे बढ़ते हैं तो पक्षी उड़ते मालूम पड़ते हैं, तो हाँ लगता तो है। और लोग पानी भर करके लौट रहे हैं, अब तो कंफर्म हो गया कि पानी जरूर आगे है, पर अभी भी पिया नहीं है, अभी अनुभूति नहीं हुई है पानी पीने की, अभी पेट नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई। जब वहां पहुंच गए तो देखा तो अब जो है प्रतीति हो गई, इस एहसास हो गया कि सच कहा था, पानी तो ये है सामने पर अभी भी स्पर्श नहीं हुआ। अब झुकेंगे और अपनी अंजलि बांधेंगे, पानी हाथ में आएगा, पिएंगे, तब जाकर के जो उसने कहा था कि पानी वहां है उसकी अब अनुभूति होगी। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। हमें कहां तक पहुंचना है आज हम इस बात को ध्यान रखेंगे। श्रद्धा की बात हम सुन रहे हैं लेकिन ये श्रद्धा हमें कहां तक ले जाने वाली है, ये हमें अपनी आत्मा की अनुभूति तक ले जाने वाली। जैसे संसार की चीजों के प्रति रुचि हमें संसार के अनुभव में सहायक होती है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग के प्रति जो रुचि हमारी है वो हमारी आत्मानुभूति में सहायक होनी चाहिए। ये हमारा प्रयोजन इस श्रद्धा का है। क्यों हम श्रद्धा बार बार कह रहे हैं, क्यों हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए एक बार कर रहे हैं कि बिना सम्यक दर्शन के आत्मा की और वो भी अपने निज स्वरूप की अशुद्ध आत्मा की अनुभूति तो निरंतर होती। राग द्वेष से मलिन हम हैं इस बात की अनुभूति तो हमेशा होती है, लेकिन राग द्वेष से परे भी हमारा कोई स्वरूप हो सकता है, इस बात की अनुभूति तो श्रद्धा होने के बाद ही हुआ करती है। हमारा एम, हमारा गोल यही है और हमारा अप्रोच भी इसी तरह होना चाहिए। आज थोड़ी सी आपसे कठिन बात से मैंने शुरू किया है क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से आप इतने परफेक्ट हो जाना चाहिए कि अब ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगनी चाहिए। कि अब हमें कोशिश क्या करनी है, अभी तो हम बार बार कह रहे थे सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा, तो वो तो हमने कर रखी है सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा और सात तत्वों का हमको स्वरूप भी मालूम हो गया है। अब क्या करें, आगे बढ़ें, पहुंचना कहां तक है, आत्मानुभूति तक पहुंचना है। लेकिन वहीं बैठे बैठे क्यों, वहीं बैठे बैठे तो धोखा भी हो सकता है। जिस स्थिति में पहुंच करके वो आत्मानुभूति होती, क्यों ना हम उस स्थिति में अपने को खड़ा करें और फिर वहां से उस आत्मानुभूति की थोड़ी सी झलक, या कि जिनको वो आत्मानुभूति होती उनके निकट बैठ करके उस आत्मानुभूति की झलक ले ले कि कैसे इस संसार के प्रपंच के बीच में कोई पांच इंद्रियों के विषय और मन के विषयों से हट करके कैसे अपने आत्मा के बारे में जरा देर को सही पर उसको कहते दिट्ठिमग्, जिसने मार्ग देख लिया है सम्यक दृष्टि, एक बार अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो मार्ग आत्मानुभूति का प्रशस्त हो जाता है। फिर चाहे दुनिया में कहीं भी रहा आवे वो फिर लौट करके कहते मार्ग देखा हुआ है, डोंट वरी, कहीं भी चले जाइएगा, कोई डर वर की बात नहीं है, वापस आएंगे कहां जाएंगे, वहीं पर फिर उसको स्पर्श करके फिर वापस संसार के प्रपंच में चले भी जाएंगे तब भी अब संसार बांध नहीं पाएगा। ऐसी ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा के बारे में अपन लगातार नई नई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस श्रद्धा को पाएं और कैसे श्रद्धा को पाकर के अपने आत्मा का कल्याण करें। श्रद्धा को पाने में बाधक क्या है, ये अपन ने पिछले दिनों सीखा था कि श्रद्धा को पाने में बाधक है अंधश्रद्धा। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजें जिनमें धर्म नहीं है उनमें धर्म मान लेते हैं। धार्मिक क्रियाओं में जो दो तरह की धार्मिक क्रियाएं हैं, एक तो वास्तव में धार्मिक क्रियाएं जो हमें धर्म की तरफ ले जाती हैं वे धार्मिक क्रियाएं हैं, उनमें धर्म मानना फिर भी ठीक है, लेकिन जिनसे संसार बढ़ता है ऐसी क्रियाएं, ऐसी धार्मिक क्रियाएं भी हैं जिनसे संसार बढ़ता है, उनको धार्मिक अलग अलग लोग कौन अपनी चीज को अधार्मिक कहेगा भैया, ऐसे भी कई मत मतांतर हैं, ऐसे भी कई दर्शन हैं जिनमें कई क्रियाएं हैं जिनको धार्मिक मान लेते हैं। हिंसा की क्रिया को भी कई कई लोग धार्मिक क्रिया मान लेते हैं। अपन देखते हैं, स्पष्ट ना कह के ऐसे ही समझ देना चाहिए उन चीजों को कि हाँ कई लोग किन किन कैसी कैसी हिंसा की, झूठ की, चोरी की, इन चीजों में भी धर्म मानकर बैठे हुए हैं। हमें इन क्रियाओं को धार्मिक नहीं मानना है। और भी जो लोक में प्रचलित मान्यताएं हैं उनमें धर्म होता है ये नहीं मानना है। और देव के बारे में भी हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। जैसा देव का स्वरूप कहा है उसमें जरा भी गाफिलता नहीं होनी चाहिए। हम जरा भी कंसीडर नहीं करेंगे 18 दोषों से रहित, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये लक्षण जहां पाए जाएंगे वहां हमारा माथा जल्दी से टिक जाएगा, वरना और कहीं हमारा ये माथा देवत्व की हैसियत से नहीं झुकेगा। वैसे तो ठीक है, माता पिता के लिए प्रणाम करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता, वो अलग चीज है। लेकिन नमोस्तु और आराध्य देव मान करके आराधना का भाव हमारे भीतर, तो ऐसे भगवान होंगे वीतराग जो उपदेशी उनके प्रति होगा। गुरु का स्वरूप भी जो है बड़ो सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। कई बार जो है हम जो सग्रंथ हैं जो निर्गंत हुए ही नहीं है, बड़ा मजा है। एक एक मान्यता है कि सग्रंथ तो भीतर से और बाहर से निग्रंथ, और एक मान्यता है कि नहीं भीतर से निग्रंथ हो गए बाहर से भले ही ग्रंथि सहित रहो, कपड़े पहने पहने भी निर्ग्रंथ हो सकते हैं। ऐसा भी हमारे मन में कई बार भाव आ सकता है कि ये तो भीतर की नग्नता की बात है, लेकिन भैया जब तक बाहर की नग्नता नहीं होगी तब तक भीतर की नग्नता तो संभव ही नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि बाहर की नग्नता हो जाने के बाद भी भीतर की हो पावे या न भी हो पावे, लेकिन भीतर की तब होगी जब तक कि बाहर की नहीं होगी। बाहर से हमें अपने बुद्धिपूर्वक जिन जिन चीजों को संग्रह करके रखा है, जिनको हमने अपना मान के रखा, उनको विसर्जित तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होने वाला। विसर्जन के बाद भी, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना ये कोई बहुत आसान सी चीज नहीं है। बहिरंग के त्याग करना तो फिर भी आसान है, लेकिन भीतर के परिग्रहों को त्याग करना, मिथ्यात्व और कषायें और नौ नौ कषायें, इन सब का उदय तो होता है लेकिन उस उदय में गाफिल नहीं होना, ये तो बहुत पुरुषार्थ की बात है। जो दिखाई नहीं पड़ते हैं परिग्रह, हमसे पूछ लिया था कि बाहर के परिग्रह की बात तो हमें समझ में आती, आपके आपके अंतरंग परिग्रह की क्या स्थिति है, ऐसा एक प्रश्न पत्रकार ने कर लिया था। होशियार थे वो पत्रकार, अंतरंग के परिग्रह की क्या है, तो मैंने कहा भाई सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है सो मिथ्यात्व विथ्यात्व वाली बात तो कह सकते हैं व्यवहार से, तो हम के सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है तो वो मामला तो ठीक है अपना सुलझ गया। तो शायद ऐसा है कि कभी धीमी आती है कभी तेज भी हो जाती है। हाँ किसको नहीं आती कषाय बताइएगा, क्रोध मान माया लोग संजलन प्रकार की आए, चाहे अप्रत्याख्यान की आए, चाहे प्रत्याख्यान वाली आए, चाहे अनंतानुबंधी वाली आए, कषाय तो संजलन वाली भी कषाय तो कषाय कहलाती। छठे सातवें गुण स्थान में भी जो मुनि महाराज विचरण करते हैं उनके संजलन कषाय की तीव्रता में दूसरे के घात करने का भाव तक उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कितनी देर, 48 मिनट के पहले पहले मामला साफ हो जाना चाहिए, वरना फिर नीचे आना पड़ेगा, गुणस्थान गिर जाएगा। तो अंतरंग के परिणामों की संभाल प्रति समय होती रहती है। ऐसे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से जो रहते हैं वे हमारे गुरु हैं। बहिरंग परिग्रह तो बाहर दिख रहा है कि उससे रहित हैं, लेकिन अंतरंग में भी वे निरंतर अपनी संभाल करते रहते हैं 24 आवर्स। बाहर से तो मालूम नहीं पड़ सकता कि कैसे कर रहे हैं, कितनी सारी चीजों के निमित्त बनते हैं, अच्छी भी चीजों के निमित्त बनते, बुरी भी चीजों के निमित्त बनते हैं। इसके बावजूद भी जो है जल्दी से अगर कोई कषाय आ भी गई है तो उसे साफ सूख कर लेते हैं। ऐसे प्रयास में जो लगे हैं वे ही हमारे गुरु हैं, जिनको इस बात की सुध-बुध तो है कि ये अंतरंग परिग्रह हमारा घात करने वाले हैं, बहिरंग परिग्रह भी हमारा घात करने, और जो सग्रंथ हैं जो अभी वस्त्र में ही कह रहे हैं कि हम निग्रंथ हैं, तो उनको हम कैसे एकदम स्वीकार कर लेंगे। उनको मैंने अंधविश्वास में नहीं पड़ जाना, कोई ऐसा कह देवे कि भीतर से निग्रंथ हो सकते हैं या भावलिंगी हो सकते और बाहर से कपड़े भी पहने रहे, ऐसा थोड़ा सा विचार करके चलना। और फिर कहते हैं आरंभ करते हो, पांचों संसार के पाप में लगे हुए हैं और फिर भी हम उनको गुरु मान बैठे हैं, और हिंसायाम हिंसा का खुद तो नहीं कर रहे, हो सकता करवा रहे हो, हो सकता है उस हिंसा करने वाले की अनुमोदना कर रहे हो। बड़ी सावधानी की बात है, बाहर से जितना देखा जा सके उतना जरूर देखना, संसार अवर्त वर्ती नाम, और जो संसार के ही भ्रमण में लगे हुए हैं पाखंडी नाम, ऐसे पापम खंडेति इति पाखंडी। अब तो बिगड़ गया है शब्द, पाखंडी कह दो कोई को तो बुरा ही मान जाएगा, और पहले साधु को कहा जाता था पाखंडी। पापम खंडेति इति पाखंडी, जो अपने पापों का खंडन करने में लगा हुआ है वो पाखंडी है, मगर जो पाप करने में लगा हुआ है तो वो तो पाखंडी मूर्ता हो गई, ये कहना चाह रहा है यहां पर। उसकी प्रशंसा करना मन से वचन से और शरीर से किसी भी तरह से, ऐसे आरंभ परिग्रह से लिप्त को गुरु मानकर उसकी प्रशंसा करना, और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं उनकी प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं निकले बल्कि उनकी छीछालेदारी करना, ये किस बात का प्रतीक है? धीरे धीरे आपकी श्रद्धा टूट जाने वाली है। भले ही आपको हो गई सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा, हो जाती है फिर उसके बाद में क्या होता, और बहुत सारे भ्रम हैं, वे सब देख करके जो है दूसरे की प्रशंसा शुरू हो गई सग्रंथ वाले की, तो अब निग्रंथ वाले की प्रशंसा नहीं हो पाएगी। अब तो उनमें से वैसे तो देखो अच्छा उनका भी तो कितना अच्छा है, ये अकेले नग्न होने से क्या होने वाला, इनकी भी तो कुछ कमियां हैं, तो ऐसे तो उनके भी थोड़ी बहुत हैं, पर हैं तो दोनों बराबर ही। हो गया खेल आपका, उनका तो जो हो रहा सो हो रहा, आपका तो खेल हो गया, आपकी तो श्रद्धा में बट्टा लगना शुरू हो गया, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी श्रद्धा टूट करके गिर जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी मूर्ता में मत पड़ जाना, देव गुरु शास्त्र या कि लोक में जो मान्यताएं हैं उनमें धर्म मान करके, जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि धर्म नहीं है उसमें धर्म मान करके, और विमुक्त नहीं हो जाना, विस्मित नहीं हो जाना। लिखा है कि सम्यक दृष्टि दूसरे के अपार वैभव को देख करके भी विस्मित नहीं होना, यह सम्यक दृष्टि का लक्षण है। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आ जावे तब भी विचलित नहीं होता, तो कहते कि चाहे किसी का कितना भी वैभव दिखाई पड़े, ऐसा नहीं आता मन में घड़ी इतना ऊंचा, इतना विशाल इनका भवन, नहीं कोई आश्चर्य नहीं है, पुद्गल की परिणति है। देखो आप, ये वस्तु का स्वभाव नहीं है, ये तो वैभाविक स्थिति है, चाहे वो महल हो चाहे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व हो, दोनों चीजों को वो सिर्फ पर्याय मान करके पर्याय में मुक्त नहीं होता है। पज्जे मूरा ही पर समिया, इसलिए आचार्य भगवंतों को कहना पड़ा कि जो कुछ भी बाहर में दिखाई देता वो सब पर्याय है, द्रव तो दिखाई नहीं पड़ता, उस पर्याय में ही विमुक्त होकर के उसी को द्रव मत मान लेना, उसी को वस्तु स्वरूप मत मान लेना। अगर ये ऐसा होगा तो धीरे धीरे ये तुम्हारी जो श्रद्धा है वो टूटना शुरू हो जाएगी। पर्याय में मूर्ता की वजह से ही राग द्वेष होते हैं भैया, बाहर की चीजें जो चाहे पुद्गल की पर्याय हो गए और चाहे जीव की पर्याय हो गए उसको देख करके ही राग द्वेष होते, और वहीं से हमारा श्रद्धान और वहीं से हमारा मोक्ष मार्ग बनता भी है और बिगड़ता भी है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आगे कह रहे हैं और क्या सावधानी रखना, अहंकार नहीं कर लेना। अहंकार कितने तरह के हो सकते, जितने लोग हैं उतने तरह के अहंकार हो सकते, लेकिन आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से समंतभद्र आचार्य महाराज ने तो आठ अहंकारों में सब अहंकार गर्भित कर दिए कि दुनिया में जितने अहंकार होते हैं उनमें आठ ही अहंकार हैं। एक हमने कहीं पर घटना पड़ी थी कि इन आठ में से भी प्रमुख तो दो ही हैं, पैसा और प्रतिष्ठा, इसका ही अहंकार ज्यादा है। और तो दूसरी चीजें हैं नहीं, ज्ञान व्यान तो ज्यादा है नहीं, पैसा है और प्रतिष्ठा है, इनका अहंकार भारी है। तो क्या हुआ, एक बार एक राजा ने जो है एक साधु जी को बुलाया, अपने महल में बुलाया। उनका इंटेंशन ये नहीं था कि हम इनको भोजन वोजन तो करवाएंगे ही, पर जरा महल दिखा दें। साधु जी ने कहा महल वहल देखा होगा, इनको कहां जुटता है महल वहल। तो साधु जी भी होशियार थे, उन्होंने कहा आएंगे हम, कभी आएंगे आपके यहां पर। एक दिन अचानक जो है पहुंच गए वहां, तो राजा साहब ने बड़ा उनका स्वागत वागत किया और भोजन वजन की तो बाद में देखेंगे, आइए थोड़ा आपको दिखाएं हम कैसे कैसे कहाँ रहते हैं और कैसा बनाया। सारा महल उनको दिखाया, ऊपर की छत पे ले गए, साधु जी मुस्कुराते हुए सब देख रहे हैं। और छत पर ले जाने का इंटेंशन भी उनका ये था कि थोड़ी दूर समुद्र दिखाई पड़ता था, उसमें सैकड़ों जहाज आ रहे थे जा रहे थे। राजा ने बड़े उससे कहा साधु जी के, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं आते जाते जहाज, ये सब अपने ही हैं महाराज, आपके ही हैं, देख रहे हैं आप कितने जहाज हैं, गिन सकते हैं आप? बोले हाँ गिन सकता हूं। कितने हैं? दो हैं बस, दो ही जहाज। अरे आपने इसका मतलब बिल्कुल पढ़ा नहीं है लगता है, इतने सारे जहाज हैं सैकड़ों, मैं तो गिन भी नहीं पाता हूं। आप कह रहे दो ही हैं? बोले हाँ दो ही दिख रहे हैं, एक पैसे के अहंकार का जहाज और एक अपनी प्रतिष्ठा का जहाज, दो ही जहाज दिख रहे हैं और ये जहाज तो सब बेकार के। तुम्हारे अंदर दो ही जहाज तैरते मुझे मालूम पड़ रहे हैं, तुम्हारे इस भाव रूपी संसार रूपी जो समुद्र है उसके भीतर तुम्हारा संसार बढ़ाने वाले दो ही जहाज हैं जिनसे तुम्हारा काम चल रहा है, मेरी प्रतिष्ठा। मेरे सामने भी, साधु के सामने भी अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार तुम कर रहे हो और अपने पैसे का अहंकार कर रहे हो, दो ही चीजें तो हैं तुम्हारे इस अहंकार के लिए, दो ही जहाज तुम्हारे हैं। ऐसे ही बता रहे हैं कि कितने जहाज अपने दुनिया में और हम दौड़ाते हैं, कितनी सारी यात्राएं करते हैं, किस किस अहंकार की यात्राएं कितनी लंबी चौड़ी हैं बताते हैं, संभालने के लिए बता रहे, किसी की निंदा करने के लिए नहीं बता रहे कि किसको कौन सा अहंकार है, नहीं, अपनी संभाल के लिए कि देखो सम्यक दर्शन हो गया तो अहंकार नहीं होना चाहिए, अगर अहंकार आ जाएगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। अहंकारी व्यक्ति किसी से अनुराग कर सकता है तो स्वार्थ कहलाएगा वो, अहंकारी व्यक्ति का अनुराग तो स्वार्थ ही कहलाता है, उसको अनुराग थोड़ी कहते। और अपन कह रहे हैं कि भगवान के प्रति अनुराग है तो फिर अहंकार की कोई बात ही नहीं। पहले नंबर जाकर के भगवान के दर्शन होते ही साथ लिखा कि माथा टेक देना, आधा अहंकार तो वहीं समाप्त हो गया, हमने किसी के सामने माथा झुका दिया। लेकिन माथा भी झुकाने के बाद हो सकता है मजबूरी में झुकाना पड़ा हो, तो कहते अब खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की विनती कर रहे कि प्रभु पतित पावन मैं अपावन, तो सब उसी का विस्तार है विनती का, नित्य में विनती हो गई प्रभु पतित पावन मैं अपावन, यह विनती की शुरुआत है। और इसके बाद क्या कह रहे, चरण आयो शरण जी, आपके शरण में आया हूं, अपनी विरदावली निहारो, अपनी प्रशंसा इस बात, आपकी प्रशंसा इस बात में है कि आप संसार से पार कर देते हो, इसलिए हम आपके पास आए, ये आपका गुणगान है। इतना गुणगान करने के बाद दूसरी बार प्रणाम करो, अहंकार पूरा का पूरा टूट गया समझ लो, पर ममकार शेष रह जाता है, मेरापन तो शेष रह गया है, शरीर मेरा है, ये पुंज जो लेके आया हूं ये भी मेरे हैं। सो अब तीसरे बार खड़े होकर के जो है और सारे पुंज भगवान के सामने समर्पित करके, अपने तक को समर्पित करके, हाथ नीचे करके नौ बार नमोकार करते हैं। ये दर्शन की पूरी प्रक्रिया किस बात की सूचक है? ये भगवान के दर्शन की प्रक्रिया अहंकार और ममकार तोड़ने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि वो जब तक अहंकार ममकार रहेगा तब तक हमारी श्रद्धा जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी, वो हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं कहलाएगी, वो किसी भी दिन टूट सकती है। अहंकार हमारी श्रद्धा को तोड़ देता है। अहंकार के मायने समझते आप? अनुभव तो बहुत है अपन को, लेकिन कोई पूछे तो नहीं बता पाएगा कि अहंकार की परिभाषा क्या बनाओगे। कहते अपनी योग्यता से अधिक प्रशंसा की आकांक्षा रखना, इसका नाम अहंकार है और कुछ नहीं। जितनी योग्यता है उससे अधिक प्रशंसा की आकांक्षा, दुनिया से प्रशंसा की आकांक्षा रखना, यह अहंकार है। और जितनी योग्यता है उतने भी उतनी सम्मान की आकांक्षा रखना, इसका नाम अभिमान है। और हमारी योग्यता का सम्मान हो या नहीं हो पर हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह स्वाभिमान है। और चाहे हमारी योग्यता को सम्मान हो चाहे न हो वे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निराभिमान है और कुछ नहीं। चारों चीजें हैं, अहंकार है, अभिमान है, स्वाभिमान है, निराभिमान है। अच्छी स्थिति तो निराभिमान की है, निरहंकार होना चाहिए, लेकिन कहते कि स्वाभिमान भी होना चाहिए। वो स्वाभिमान को अपन क्या कहेंगे? अपने पद का गौरव, मैं इस कुल में पैदा हुआ इस बात का गौरव नहीं, मैं तो तीर्थंकरों की परंपरा में पैदा हुआ इस बात का गौरव, मैं तो इक्ष्वाकु वंश जो आदिनाथ भगवान का था उस परंपरा में पैदा हुआ इस बात का गौरव है। घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, गौरव है, यह स्वाभिमान है मेरा। क्योंकि अगर मैं स्वाभिमान खो दूंगा तब तो फिर मैं उस पद की रक्षा ही नहीं कर पाऊंगा, जहां पैदा हुआ हूं उस धर्म की रक्षा नहीं, अगर धर्म का गौरव ना हो, जैसे अपन सुनते ना कि देश का गौरव हो तो आदमी देश के लिए कुछ करता, धर्म का गौरव हो तो फिर आदमी धर्म के लिए कुछ करेगा। तो गौरव तो पूरी चीज नहीं है, पर वो धीरे धीरे दूसरे को तो नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा साबित करना, यहां से शुरू हो जाता, फिर अहंकार आना शुरू हो जाता। तो इसमें बता रहे हैं कि कितने प्रकार का अहंकार हो जाता, आ जाता, आ सकता है, सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बलम रथिम तपो वपुः, तपो वपुः अष्टावाश्रित्यमानित्वम्, इस्मै माहुर्गतस्मया, इस्मयम् आहु, इस्मय अर्थात अहंकार कहते हैं, गतिस्मया जिनका अहंकार नष्ट हो गया है, ऐसे भगवान क्या कहते हैं, इन आठ चीजों को या इन आठ बातों के माध्यम से जो हमें अहंकार आ जाता है उसको यहां पर अहंकार माना, ज्ञान के माध्यम से आ जाता। थोड़ा सा भी जो है अपने को चार बातें धर्म की आने लगे तो कोई पूछे कि क्या भैया थोड़े बता दो, फुर्सत नहीं आवे, कोई मंदिर में ही ले लो, आप दर्शन करके निकल रहे थे और किसी को थोड़ा कम दिखता है या बूढ़ी अम्मा जी हैं, ये भैया तत्पार सूत्र आउट हो तो सुना दो, हमें नहीं आउट, आउट हुई है मनो नहीं आउट, क्या होगा इससे, इससे ये आपके भीतर के अहंकार की सूचना है, आते हुए भी उसका आप अनादर कर रहे हैं, उस धर्मात्मा का, वह आता नहीं है और फिर नियम भी ले लिया सुनने का, क्या तुम्हारे लिए कोई सुनाने आएगा यहां पर, उस धर्मात्मा का जो कि यह कह रहा है कि मुझे तत्पार सूत्र सुना दो, आपने दो एक साथ चीजें करी, उसका अनादर भी करा और अहंकार भी कर लिया कि मुझे आता है पर सुनाऊंगा नहीं, और उस धर्मात्मा का तो अनादर हो ही गया। कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से बहुत जल्दी, सबसे पहले ज्ञान रखा है, अगर अहंकार आता है तो सबसे पहले ज्ञान की वजह से ही अहंकार आता है, उस ज्ञान को इसलिए सच्ची श्रद्धा दिशा देती है, ज्ञान को बीच में रखा दर्शन और चारित्र के, ज्ञान ऐसी चीज है जो इधर सम्यक दर्शन को भी संभालती, वहां पर आचरण को भी संभालती, दोनों को संभालने के लिए बीच में रखी, और वही सबसे डेलिकेट चीज है, उसी की वजह से अहंकार बहुत जल्दी आता है। थोड़ी चार बातें आ गई तो हमें अपने अंदर अपना पांडित्य बताने की इच्छा होने लगती, अपनी विद्वत्ता बताने की इच्छा होने लगती, और सबसे बड़ी चीज दूसरे को अज्ञानी साबित करने की इच्छा होने लगती, ये सबसे ज्यादा खराब बात। हम ज्ञानी हैं सो भैया अच्छी बात है, लेकिन सब दूसरे अज्ञानी हैं ऐसा मानने की क्या आवश्यकता है। कहते ज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं करना कि दूसरे को अज्ञानी साबित कर सको, पैसा इसलिए नहीं कमाना कि दूसरे को गरीब घोषित कर सको, हम पैसा वारी हो जे तो सब कछु धेला नहीं है, दरिद्री हैं, इसके लिए पैसा नहीं, इसके लिए ज्ञान नहीं। कहते हैं वो तो सिर्फ हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए हमने ज्ञान प्राप्त किया, और इस ज्ञान का क्या अहंकार करना, शायद समय ज्ञान है, थोड़ी थोड़ी सी अभी तकलीफ हो जावे तो ज्ञान व्यान सब एक तरफ धरा रह जाता है, पानी और डॉक्टर दिखाता और उसके अलावा कोई नहीं दिखाता उसे, थोड़ी सिर में दर्द होने लगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और समझदार समझदार व्यक्ति का ज्ञान व्यान कहां धरा रह जाता, कुछ नहीं। और ज्ञान का क्या है, इस पर्याय के साथ में समाप्त हो जाता जी, पर्याय के साथ में आपने बड़ी बड़ी डिग्री भी ली होए और फिर खत्म हो जाओ, दूसरी जगह पैदा हो तो एम ए पढ़े पढ़ा नहीं पैदा हो, अनार को फिर पढ़ने पड़त, हम तो एम ए पढ़ के मरे थे तो जब पैदा हुए तो वो के आगे पढ़े, ऐसा होता है कभी नहीं होता, वो कहां चला गया, वो इस पर्याय के साथ ही, क्योंकि सर्वोपसम ज्ञान था, हम अगर अहंकार करें तो कौन से ज्ञान का करें, केवल ज्ञान का करें जो मेरे आत्मा का स्वभाव है, उसका गौरव हमें होना चाहिए, ये छोटे मोटे से ज्ञान का, हमें तो अनंत जो ज्ञान है जो हमारा स्वभाव है उसका अगर हमें अहंकार नहीं उसका अगर गौरव होता है तो वही शाश्वत है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ये और सबसे ज्यादा अच्छी भी है, ज्ञान समान ने आन जगत में सुख को कारण, ऐसा भी लिखा हुआ, और आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञान ही भाव का कूल है, ज्ञान ही भाव का मूल है, और राग रहित प्रतिकूल है कि राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। अगर ज्ञान के साथ राग है तो वो संसार में भटकाएगा, प्रतिकूल है, और अगर जिस ज्ञान के साथ वीतरागता है वो ज्ञान तो अनुकूल है, वो हमें पार लगा देगा। अर्थात ऐसा ज्ञान जिसके साथ अहंकार न हो गए, विनम्रता हो गए। आपने तो जिनेंद्र वर्णी जी को देखा है, आपके यहाँ तो रहे हैं, उनकी विनम्रता आपने देखी होगी, और बड़े वर्णी जी की जब मैं चर्चा करता हूँ बड़े वर्णी जी की, तो उनकी सरलता देखी होगी। ईसरी की बात है, पहले तो सागर में ही जब वाचना चल रही थी, सन 80 के लगभग की बात है या कि 82 की वाचना की बात है, दोनों में से कोई एक समय, और बड़े बड़े पंडित आकर के बैठे हैं, धवला की वाचना चल रही, उसमें एक शब्द अटक गया। उस शब्द पर आधे घंटे आचार्य श्री बैठे हैं, सारा संघ बैठा है, पंडित जी लोग, आधे घंटे तक कोई निर्णय नहीं हो पाए कि इस शब्द के एक्चुअल मीनिंग क्या है, और वर्णी जी वहीं बैठे हैं चुपचाप, बीच में बिल्कुल नहीं बोले। अचानक जो है पंडित कैलाश चंद जी को याद आया कि अरे वर्णी जी बैठे, उनने तो कोश बनाया है, उनको तो 150 ग्रंथों में इस शब्द का क्या अर्थ है ये सब मालूम। कहले वर्णी जी इस शब्द का क्या अर्थ है, आपने तो कोश बनाया है। तो हाथ जोड़ करके बोले कि आचार्य महाराज की आज्ञा हो तो कहूं। आचार्य जी ने कहा हाँ हाँ वर्णी जी, आप में तो ध्यान ही रहा, आप बताइएगा। तो उनने फौरन आधे घंटे से जो जिस पे उलझन हो रही थी वो दो लाइनों में उसका परिभाषा बता दी कि महाराज सब ग्रंथों के अनुसार परिभाषा तो इस शब्द की ये है। बात सुलझ गई। तो पंडित जी बोले इतनी देर से आप क्यों चुप बैठी थी, अरे आप इतने बड़े आचार्य भगवंत और आप विद्वानों के बीच, मैं कैसे बीच में बोल सकता, मैं अल्पज्ञ। ये है ज्ञान की विनय, ज्ञान के साथ आने वाली विनय ये है कि वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छल कर जाए वाली, वैसा नहीं, पूरा ज्ञान है, चुप बैठे जब तक कोई हमसे नहीं पूछेगा तो क्या मतलब है कि हम बीच में अपना जबरदस्ती कि हमको आता है, हमको इतनी बातें आती। अपने साथ तो यही है, अगर अपन कोई से, हम तो देखते हमेशा कि अगर कोई से कोई छोटी धर्म की चर्चा करो और वो में एक समझदार बैठे हुए तो हम तो बताने पे पहले वो पहले ही बता देंगे, हम कबाद में बता पाए, वो कह रहे अर्थ है तो मुझे इतने नहीं मालूम, महाराज जी से पूछ रहे तुम, अरे इतनी तो हम ही कमा लूं। ऐसा आ जाता, मैं ये निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, अपने परिणामों को परखने की दृष्टि से कह रहा हूं कि देखो अपने परिणाम कितनी जल्दी हो जाते, कितने छोटा सा ज्ञान होने के बाद भी, चार लाइनें होने के बाद भी, और अपन को कितनी जल्दी ऐसा मन में आने लगता है, आना नहीं चाहिए। अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है सच्चे देवगुरु शास्त्र पर और उस केवल ज्ञान की हमें स्मृति है तो उसके सामने तो हम अपने को अज्ञानी मानेंगे। वो लिखा भी है कि केवल ज्ञान से पहले पहले चाहे कितना ज्ञान होवे सब अज्ञान की कोटि में है, और मिथ्यात्व के साथ में कितना ज्ञान हो गए वो सब भी अज्ञान की कोटि में। सम्यक दर्शन के साथ भी ज्ञान है तब भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो सब ही अज्ञान, छदमस्त का ज्ञान तो सब अज्ञान ही है। भगवान तो केवल ज्ञान होने से पहले दीक्षा लेने के बाद मौन ही रहते हैं कि क्या बोलूं, जो कुछ भी बोलूंगा जब तक मैंने सब नहीं जाना है तो क्या बोल सकता हूं। जब केवल ज्ञान के माध्यम से सब जान लेते हैं फिर जो है उनकी दिव्य ध्वनि अपने आप गिरना शुरू हो जाती है। किस बात का प्रतीक है, हमें ऐसा सब विचार करना चाहिए कि ये छायोप समय ज्ञान है, नश्वर है, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, इसका क्या अहंकार करना। ऐसा सम्यक दृष्टि विचार करके ज्ञान का अहंकार नहीं करता। कहते पूजा का अहंकार, पूजा का अर्थ तो यही है कि ख्याति पूजा लाभ, ऐश्वर्य बहुत मिल गया किसी पुण्य की वजह से, धन पैसा हो गया या कि कोई अच्छा पद मिल गया है, हैं तो उसका अच्छा सम्मान होने लगा तो ये पूजा हो गई। हमें तो कई बार ऐसा लगने लगता कि कंचन कामनी छोड़ना तो आसान है लेकिन ख्याति पूजा लाभ छोड़ना बहुत कठिन है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और हमें ज्यादा से ज्यादा लोग माने। किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, पहुंचे से पहुंचे व्यक्ति के पास चले जाओ, उसके भीतर ये दो बातें डोल ही जाएंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग माने। ये पूजा का जो लोभ है, ये पूजा का लोभ संसार में भटकाने वाला। किसी में कमती होता भैया, किसी में ज्यादा होता, सबकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि कमती होवे, और एक स्थिति में तो बिल्कुल न होवे तो बहुत अच्छा। किस बात की पूजा है, अगर देखा जाए तो हमारे पूजा तो
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जो अनंत चतुष्टय है वो वास्तव में पूज्य है। हम थोड़ी बहुत कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते, उसमें क्या पूजा की आकांक्षा, उसमें क्या ख्याति की आकांक्षा रखना। होती भी हो तब भी कोई आकांक्षा नहीं, नहीं होती हो तो कोई दुख भी नहीं है, ऐसे समता भाव रखना। शावक संतोष तो रख ही सकता है। आज अपन कितनी दौड़ उसी पूजा की वजह से, उसी प्रतिष्ठा की वजह से कितनी दौड़ दौड़ रहे हैं। स्टेटस पॉइंट नहीं साहब, हमारे स्टेटस का सवाल है। किसी छोटे से पद पर हैं तो गलत सलत भी कर जाएंगे तो भी हमारे स्टेटस का, अब हम माने कैसे, बहुत मुश्किल है। एक बार जो चीज हमारे मुंह से निकल गई अब उसको स्वीकार करना बहुत कठिन। एक व्यक्ति ने तो कह दिया था, नाम नहीं लूंगा, जब उनसे कहा कि आप तो सब जानते हैं और फिर भी आप ऐसा प्ररूपण कर रहे हैं, तो बोले हाँ जानते तो हम हैं लेकिन जो चीज 50 साल से कहते आ रहे उसको एकदम कैसे बदल देवे, और हमारे 5 लाख शिष्य हैं महाराज। गलत है जान रहे हैं लेकिन मेरी पूजा तो इस गलत कहने से ही हो रही है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। कल के दिन कौन मुझे पूछेगा, मेरे वही जो शिष्य हैं वो कहेंगे कि वाह कल तक आप ऐसी कहते थे, हम इसलिए आपके साथ थे और आप आज ऐसी बदल गए, आप अब छोड़ते हम आपका साथ, तो पूजा कैसे मिलेगी हमें, इतना जो हमने पसारा फैलाया है उसका क्या होगा। तो ऐसा पूजा के लालच में अहंकार वश जो है हम कई बार अपना संसार ही बढ़ा लेते हैं। संसार जिस चीज को हमने संसार घटाने के लिए स्वीकार किया था उसी से हम संसार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सावधानी की आवश्यकता, ये सब अपने लिए सावधानियां बता रहे कि पूजा का अहंकार मत कर बैठना, और पूजा का एक बार अहंकार आ गया तो गलत सलत सारी चीजें भी फिर वैलिड हो जाती हैं, फिर हम ज्ञान भी अगर उसके साथ हो तो तर्क वर्क दे करके और फिर अपना सब एकदम बढ़िया बना लेते हैं। ये फिर कहते हैं कि कुल का अभिमान नहीं करना और जाति का अभिमान नहीं करना। कुल हो जाति तो अपन समझते हैं, हैं कि पिता के वंश को कुल कहते और माता के वंश को जाति कहते, तो इसका भी अहंकार हो जाता कि हम तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के कुल में, हमारी माता का तो जो है कुल ऐसा था, हमारे पिता का कुल तो ऐसा था। तो भैया ये कितने दिन चलेगा, और इसके पहले जीवन में कौन सा था कछु याद है क्या, पता पशु योनि से आकर के मनुष्य बने हो, नरक से आकर के मनुष्य बने हो, कौन से कुल की बात करते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो कुल तो वो श्रेष्ठ है जहां रत्नत्रय की परंपरा है, और अगर उस रत्नत्रय की परंपरा वाले कुल में पैदा हुए हो तो ठीक है, अगर तीर्थंकरों के कुल में पैदा हुए हैं तो फिर भी गौरव हो सकता है। लेकिन ये जो छोटे मोटे इन्हीं में हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, आपके इस तरफ भी चलता, कई जगह देखा मैंने वो चलता है कि हम कासदी वाले हैं, हम पोर वाले हैं, हम पल्ली वाले हैं, हम बाकली वाले हैं, और हम अग्रवाल हैं, और फलाना बहुत सारी बाल बाल बाल। तो आचार्य एक बार हंसने लगे, बोले ये सब बाल गिरा दो ताकि एक हॉल बन जाए, सब इकट्ठे बैठ सकें। बाल मतलब दीवार, ये फलानी बाल फलाने वाल, इस तरह के ये हमारे हमें तोड़ने वाली चीजें हैं। कुल और जाति का अहंकार कर लेते हैं तो हम निरंतर जो है अपने सम्यक दर्शन से तो विचलित होते हैं भैया, और सांसारिक जो एक रिश्ता है, जो एक आत्मीयता है, वो भी टूटना शुरू हो जाती है। हमें इसकी भी सावधानी दोनों की रखनी चाहिए। अगर हमें कोई गौरव है तो इस बात का गौरव है कि हम तीर्थंकर की परंपरा में जन्मे हैं, हमें रत्नत्रय का कुल परंपरा से हमें रत्नत्रय मिला है, ये गौरव की बात हो सकती है। और फिर कहते बल का अहंकार नहीं करना। बल तो ये शरीर का बल कितना थोड़ा सा है, भगवान तो अनंत बल लेकर के बचपन से पैदा होते हैं शरीर का, और फिर बाद में आत्म बल के माध्यम से अनंत वीर प्राप्त कर लेते हैं, अनंत बल प्राप्त कर लेते हैं। वो अनंत बल तो हमें प्राप्त ही नहीं है, इस शरीर की थोड़ी सी क्षमता है, शरीर के बल का अहंकार करना भी कहते हैं सम्यक दृष्टि के लिए ठीक नहीं है। और फिर कह रहे हैं बल मृद्धिम तपो वपु, रिद्धि और तप इत्यादि। रिद्धि सिद्धि तो आज होती नहीं है लेकिन अपन को कोई थोड़ी सी भी हो जाती है, किसी को आज के समय में वैभव कोई रिद्धि मान रहे हैं अपन, जिसमें लिखा है पंडित जी ने कि ये मान लो कि रिद्धि तो है नहीं लेकिन वैभव ही हो जाए तो उसी को बहुत रिद्धि मान लेते, उसी का अहंकार कर बैठते। और अगर कोई बात हमारी मैंने कई बार होता ना कि फलित हो जाती, हमने जो कहा और वो हो गया तो फिर ऐसा लगने लगता है कि अरे वाह हमारे पास तो अब ये वचन सिद्धि हो गई। ऐसे कई रिद्धियों के प्रकार हैं, उनमें से एक रिद्धि ये भी है कि जैसे वचन बोल देते हैं वैसा हो जाता है। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो कहते उसका अहंकार नहीं करना है, और तब का भी अहंकार नहीं करना, तब तो इच्छाओं के निरोध का नाम है, और आप उसी तप का अहंकार कर बैठे तो ये तो एक इच्छा ही हो गई, और इच्छा के निरोध करके आपने तपस्या की थी तो तब का भी हमारे तो हमने तो एक उपवास करो, हमने तो चार करे, हमने दस करे, तो भैया बता कौन खो रहे, करे सो आपने अपने नाने करे, इसमें क्या बात है। कई बार ऐसा लोग कह देते हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि गाय शुद्धि आहार जल शुद्ध है महाराज हम कल को उपास है आहार ले लो, अरे हे उपास हमें बता खा रहे, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलो और खत्म बात। अब लेकिन वो मन से जाता नहीं कि मैंने इतना तप किया है, इसको बताने की आकांक्षा नहीं, कोई अगर उसका सम्मान दे तो उसमें भी रचना पचना नहीं, ये कह रहे हैं। और अपन अपनी तरफ से सम्मान चाह रहे कि हमने ऐसा ऐसा करा, कहते सम्मान नहीं चाहना, और कोई सम्मान देवे तो भी उसमें रंजायमान नहीं होना, ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, ये हमारे भीतर इस तरह की गुणवत्ता पैदा होना चाहिए, वो हमारे सम्यक दर्शन को बढ़ाएगी, उसको निर्मल करेगी। और एक शेष रह गया, कौन सा, बपू, शरीर का रूप रंग अगर थोड़ा सा अच्छा मिल जाता इसका इस वाले का, और कुछ नहीं, इसके नीचे वाले का तो सबका वही मामला है, इसके नीचे थोड़ा सा इसको अलग करके देखो तो वही लाल रंग का रहेगा, खून किसी का पीले पीले रंग का नहीं रहता, बीमारी मार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन लाल ही रंग का रहता है, और हड्डियां वड्डियां मिलेंगी कुछ, थोड़ा सा मटेरियल मिलेगा और क्या मिलेगा, बस ये थोड़ा सा जो है अगर अच्छा मिल जाता है तो उसी का अहंकार कर बैठते, ये सब पर्याय की दृष्टि है, इसके पीछे छुपे हुए आत्मा को जो व्यक्ति देख लेता, जैसे निर्विचिकित्सा में देखा था, जैसे वो इस शरीर को देखकर घृणा नहीं करता है, आत्मा में प्रीति करता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि तो अपने शरीर या दूसरे के शरीर को देख करके अहंकार नहीं करता है, वो तो अपने उस आत्म ज्ञान शरीरी त्रिविध कल्ममल वर्जित सिद्ध महानता, मैं तो इस शरीर से ही परे परे हूं, मेरा तो ज्ञान ही शरीर है, उस शरीर की प्राप्ति के लिए शरीर के अहंकार को तो मैं क्षण भर में छोड़ सकता हूं, ऐसे अहंकार से मुक्त होता, ये सब जो है आठ प्रकार के अहंकार हैं, इनसे बचना चाहिए, जिससे जितना बने भैया हम जानते हैं कि कितना हो सकेगा, प्रैक्टिकेबल कितना है, कदम कदम पर तो अहंकार है, जरा सा अगर अब भी इधर से नीचे उतरूं, और अगर कोई व्यक्ति दर्शन करना चाहता है और दूसरा कोई थोड़ा सा रोक देवे तो फिर देखो अब भी आ जाएगा, ऊपर चढ़ते चढ़ते देखता हूं, वॉच करता रहता हूं, ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर किसी ने थोड़ा आगे आकर के दूसरे को हटा दिया तो फिर देखो आप उसका अहंकार, ये क्या चीज है, इतने दिन वर्षों रह करके और निकट रह करके भी हम इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं जीत पाते, ये तो मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मैं तो सोचता हूं जरा सा किसी को कहीं प्रायोरिटी मिल गई तो दूसरे व्यक्ति का अहंकार बीच में आता है कि अरे वाह ऐसे कैसे, आई एम फर्स्ट, मैं प्रथम होना चाहिए था, ये कैसे प्रथम हो गया, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें धीरे धीरे हमारी श्रद्धा को कम करती हैं भैया, होती ही है श्रद्धा कम सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति, दूसरे का ज्ञान देख करके अगर आपने अहंकार कर लिया या अपने ज्ञान का अहंकार कर लिया, दूसरे से ज्ञान से ईर्ष्या कर ली तो आपने क्या किया, आपने अपना ही अहित कर लिया, देव गुरु शास्त्र तीनों के प्रति हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के और अहंकार कर बैठते हैं, ईर्ष्या कर बैठते हैं, और फिर वो प्रकट तो हो ही जाती है, देखने में तो आ ही जाती है, जहां हमें गुणिशु प्रमोदम होना चाहिए था, जहां हमें किसी के अतिरिक्त गुण देख करके सत्वेशु वैतिम तो है ही, जहां हमें गुणिशु प्रमोदम कि थोड़े से किसी के गुण अधिक हैं तो वहां प्रमोद भाव होना चाहिए था, वहां पर अहंकार और ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या जो है अहंकार का पैसिव है, पैसिव वाइज बोलते ना, छुपा हुआ रूप है ईर्ष्या अहंकार का, है वो उसी का भाई बंधु, एक ही क्वालिटी है, ये भीतर जल्दी से आ जाती है, इसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा, रोकने की कोशिश करिएगा, संभालने की कोशिश करिए, वरना ये अहंकार आगे जाके कहते हैं कि क्या स्थिति बनेगी, अहंकार वश हम धीरे धीरे अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र की भी अवमानना करना, धर्मात्मा की अवमानना होना शुरू हो जाती है अगर अहंकार आता है, तो दो हानियां होती, एक तो स्वयं का धर्म नष्ट होता है और सामने जो धर्मात्मा है उसका तिरस्कार होना शुरू हो जाता है, एक और इसका श्लोक, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं, स्मयेन्योन्यानत्येति।
थोड़ा सा संधियां बहुत हैं उसमें, इसलिए स्मयेन यो अन्यान अत्येति सब इकट्ठा होकर के
स्मयेन योन्यानत्येति। धर्म स्थान गर्विताशयः सोत्येति धर्ममात्मीयम्। न धर्मो धार्मिकैर्विना।
ये बहुत कीमती चीज है, धर्म बिना धर्मात्मा के नहीं होता है, इसलिए स्मयेन मद से युक्त होकर के, इन आठ प्रकार के अहंकार से युक्त होकर गर्विताशः, और गर्वित है जिसका चित्त घमंड से भरा हुआ है, वो क्या करता है, या ऐसा पुरुष धर्म स्थान अन्यान अत्येति, रत्नत्रय धर्म में स्थित अन्य जीवों का तिरस्कार करना शुरू कर देता है, वो मानिएगा वो अपने ही धर्म का तिरस्कार कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अहंकार वश जो है हम तिरस्कार कर देते, जैसे पैसा बहुत है किसी के पास और वो विद्वानों को बुला लेता है, तो भीतर मन में क्या आ जाता है कि देखो जी विद्वान भी जो है हमारे पैसा पे जी रहे, जी अहंकारी तो है। मुनि महाराज जी हमारे यहां पर आल लेने आते, अच्छे अच्छे मुनि महाराज आए हमारे यहां आल लेने के लिए, क्या समझते आप हमारा चौका हमेशा लगता है, जी क्या है भैया जी, आपने जो है अहंकार करके उन तक को नीचा साबित कर दिया। ऐसा धीरे धीरे मन में विचार आता जाता है कि मेरे पे ही आश्रित हैं, देवगुरु शास्त्र तक मंदिर मैंने ही बनवाया है, भगवान कहां से पधर जाते, हमारे पैसा नहीं लगते अगर तो जैसे आपने खरीद लिए सब चीजें, देवगुरु शास्त्र को भी हम इस अहंकार वश तिरस्कृत करना शुरू कर देते हैं। कहते बहुत सावधानी की आवश्यकता है, जल्दी से अहंकार वश हम अपने ही धर्मात्मा का क्या, अपने ही धर्म का तिरस्कार कर बैठते हैं, इसलिए ये अहंकार हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक घातक हैं। मैं आपसे एक छोटी सी घटना, जॉर्ज वॉशिंगटन की मैं पढ़ रहा था, उनका संस्मरण पढ़ रहा था, कितनी जल्दी हमें अहंकार आता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों का। वो जॉर्ज वॉशिंगटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, चले जा रहे थे एक दिन तो कुछ मजदूर काम कर रहे थे, वो बोझा उठा करके और ऊपर चढ़ा रहे थे, तो बहुत ताकत लगा रहा था वो मजदूर, उसे उठ नहीं रहा था, अगर उसको थोड़ा सा कोई मदद कर देता तो उठ भी जाता। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति और खड़ा है, तो उसने कहा कि भाई साहब ये मजदूर जो है वो चढ़ा रहा है, इसको आप थोड़ा मदद कर दीजिएगा। तो वो व्यक्ति जॉर्ज वॉशिंगटन को पहचानता नहीं था, उसने कहा कि जनाब आप नहीं जानते, मैं सुपरवाइजर हूं, मैं ये काम नहीं करता, ये तो मजदूर का काम है। अच्छा अच्छा आप सुपरवाइजर हैं, और आंगन फांगन उन्होंने जल्दी से जाकर के उस मजदूर की थोड़ी सी मदद की और उसने बोझा ऊपर चढ़ा दिया और अपने कपड़े वपड़े झटकार के, क्योंकि गर्दा लग गई, झटकार के और फिर सुपरवाइजर के पास पहुंचे। बोले कि सुपरवाइजर साहब ऐसे कभी भी काम अगर आपको अटक जाए तो मुझे जरूर याद करिएगा, और मेरा नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। अब तो जैसे ही नाम सुना तो हड़बड़ा गया, पैरों में गिर गया। उसने कहा कि पैर में गिरने से कोई फायदा नहीं, पर सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अपने इस पद के अहंकार की वजह से किसी की मानवता का या किसी के मजदूर का भी उसके जीवन का अपमान नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना, उसका सम्मान नहीं करते हो तो उसका अपमान भी नहीं करना। मजदूरी का अपमान कर रहे, मानवता का तुमने अपमान कर दिया है। ऐसा कई बार जो है हम सबके जीवन में भी हो सकता है, अलग अलग ढंग से घटित होता। ये दो चीजें ही तो काट ली थी रामचंद्र जी ने स्वरूप नखा की, ये कान और ये नाक। अब काटी थी कि नहीं काटी थी, मनो प्रतीक है, इसकी बहुत चिंता है और इसकी चिंता भी है। इससे सुनना चाहते हम दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा, सुजा काट ली, और इसकी वजह से हम फिरते हैं दुनिया में जो है ऊंचे उठा करके सिर, सुजे भी काट ली।
दोनों ही काट ली थी। ये दोनों अहंकार की प्रतीक हैं। हम दूसरे की निंदा सुनने के लिए बहुत जल्दी कान लगा लेते हैं और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए सजग हो जाते हैं और कहते हैं इस नाक की वजह से तो हम पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। और एक एक बार की बात है, बहुत छोटी सी बात, ताकि और स्पष्ट हो जाए। वैसे तो मैंने इतने छोटे से उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दी कि अभी देखूंगा और आप खुद अपने भीतर कि कितने जल्दी अहंकार आता है। पर फिर भी एक बार क्या हुआ, कितने जल्दी हमारा अहंकार संतुष्ट हो जाता है और कितने जल्दी हम जो है अपना सारा कुछ भूल जाते हैं और उस अहंकार में ही फूल जाते हैं। एक राजा था, वो गया होगा एक गांव में। अब गांव में गया तो एक तो गांव वालों को बहुत गौरव की बात, और वो एक दूध वाले की दुकान के सामने खड़ा हुआ और आदेश हुआ कि दूध वाला गिलास दे राजा साहब के लिए दूध का। तो उसने भर करके गिलास सबको सर्व किए दूध। अब राजा साहब आए हैं तो बहुत, तो जब पैसे वाली बात आई तो लोगों ने कहा कि कितने पैसे देना है। एक एक गिलास की 100-100 दीनार। अरे 100-100 दीनार, 100-100 सोने के सुक्के, और वो भी एक गिलास दूध का। तो उन्होंने कहा कि मिल्क आर वेरी रेयर हियर, क्या दूध यहां पर इतना दुर्लभ है? तो मालूम उसने क्या कहा, उसने कहा नॉट मिल्क आर नॉट रेयर बट किंग आर वेरी रेयर हियर। यहां राजा का आना बहुत दुर्लभ है, यहां दूध तो बहुत आसान है, इसलिए पैसे मांग रहा हूं। इतनी बात सुनते ही साथ जो राजा अभी थोड़ी देर पहले 100 दीनार की बात सुन के नाराज होने वाला था, वो फूल कर कुप्पा हो गया कि हाँ किंग्स आर वेरी रेयर हियर। ये कह रहा है कि यहां राजा का आना बहुत दुर्लभ है, दे दो इसको 100 दीनार, नहीं 400 दीनार दे दो। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कहीं प्रशंसा होती है, थोड़ा सा कहीं हमें मान सम्मान मिलना शुरू होता है, फिर हम ये नहीं देखते हैं कि ये धर्म है या अधर्म है। हम सब कुछ करने तैयार हो जाते हैं, अपनी श्रद्धा को भी चौपट करने तैयार, अपना ईमान बेचने के लिए। कई बार आपने देखा होगा दो दो पैसे के लिए व्यक्ति उठक बिठक लगाता, अपना ईमान बेचने तैयार हो जाता, अपनी सच्चाई बेचने तैयार हो जाता। इशारा कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि इन 8 चीजों के लिए, चाहे वो वैभव हो चाहे वो ज्ञान हो, इन सब की प्राप्ति के लिए इन सब के अहंकार वश किसी दूसरे का तिरस्कार भी नहीं करेगा और न ही इन अहंकार को करके अपने आत्मा का पतन करेगा। मैं भावना भाता हूँ कि हम सब के बीच, हम सब के अंदर इस तरह की श्रद्धा जागृत हो जिससे ये सुपरस्टिशंस भी हटें और जिससे ये ईगो भी जो है अपना कम हो, अहंकार और मूर्ताओं से रहित 8 अंगों से युक्त हमारा ज्ञान, हमारा जो सम्यक दर्शन है, हमारी जो श्रद्धा है, वही हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाएगी। ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुर विद्यासागर मुनि महाराज।
शाश्वत सुख जगनग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। काफिल निद्रा में सोता हो अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, वन में वन चारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया कर